रक्षित के बुलाने पर दीवा उससे मिलने के लिए क्लब पहुंची थी। रक्षित ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वो उसके साथ आज रात ड्रिंक करेगी तो वो उसके पापा को जेल से बाहर निकाल देगा। रक्षित ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी। वो अच्छे से जानता था कि ड्रिंक करने के बाद दीवा का खुद पर काबू नहीं रहता था। दीवा ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। आर्यांश ने उसकी मदद नहीं की तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दीवा जानबूझकर छोटे छोटे सिप ले रही थी ताकि उसे नशा ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षित पूरी तरह नशे में टल्ली हो चुका था। वो दीवा को मनाने लगा ताकि वो उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाए। आर्यांश की हरकतों पर दीवा उस पर जोर से चिल्लाई और इस वजह से क्लब ले बैठे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उन लोगों में एक और शख्स था जो दीवा को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा था। वो कोई और नहीं, आर्यांश था। इस बार आर्यांश वहां इत्तेफाक से नहीं पहुंचा था, बल्कि वो दीवा का पीछा करते हुए वहां आया था। क्लब के लोगों ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे तमाशे वहां होते रहते थे। वहीं आर्यांश अभी भी उन्हें गौर से देख रहा था। दीवा के चिल्लाने पर रक्षित ने मायूस आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरी भी मजबूरियां थीं। इतने सालों में कभी तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानना चाहा, तुमने तो मुझे खुद के करीब तक नहीं आने दिया, ऐसा था तुम्हारा प्यार। दीवा से बात करते हुए रक्षित ने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया था। रक्षित ने दीवा को दीवार से लगा दिया था। उसके ऐसा करने पर दीवा का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा था। जिस चीज का डर था वही होने जा रहा था। उसने रक्षित की आंखों में देखा, रक्षित की आंखों में दर्द था और वो दीवा को समझाने की कोशिश कर रहा था। दीवा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने इसीलिए जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद आकर मुझे बताओगे, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तुमने नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें कभी मेरी परवाह ही नहीं थी, रक्षित ने कहा। लोगों का ध्यान भले ही उनकी तरफ से हट गया होगा, लेकिन आर्यांश ने गुस्से में अब ग्लास को कसकर पकड़ लिया था। वो दीवा को किसी और के इतना क्लोज देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। आर्यांश ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और कहा, दीवा गोयंका, तो तुम यहां अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इस क्लब में आई हो। आर्यांश से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रक्षित दीवा के करीब था। आर्यांश अपनी जगह से उठा और दीवा की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, वो आदमी कौन है? बोलते हुए उसने दीवा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। वहीं आर्यांश को अचानक वहां देखकर दीवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, मिस्टर कपूर, आप यहां क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन, मैं यहां क्या कर रहा हूं? तुमने मुझे बताया कि तुम किसी घटिया आदमी से मिलने जा रही हो, ऐसे अकेले थोड़ी ना आने देता, मैं तुम्हारे पीछे आ गया, आर्यांश ने पूरा हक जमाते हुए कहा। उसने दीवा की कमर पर अपनी पकड़ और भी टाइट कर ली थी। उसकी हरकतें यही जाहिर कर रही थीं कि दीवा सिर्फ उसी की है और वो किसी और को उस पर नजर उठाकर देखना भी नहीं देगा। रक्षित हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। अचानक से ये आदमी कहां से आ गया था? ऊपर से वो दीवा को अपनी पत्नी कहकर बुला रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दीवा ने उसे रोका नहीं। रक्षित से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दीवा सिर्फ उसी की थी, चाहे वो उसके साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे। रक्षित गुस्से में दीवा की तरफ बढ़ा और बोला, दीवा, ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम इसे जानती हो? दीवा के बजाय आर्यांश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है और तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि ये मुझे जानती है या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे जानती है। आर्यांश अपनी बातों से रक्षित का मजाक उड़ा रहा था। हो ही नहीं सकता, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती है? क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है? रक्षित ने चिल्लाकर कहा। गुस्से में उसकी नसें तन गई थीं। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से हो रही थी कि इन सब के बीच दीवा कुछ बोल क्यों नहीं रही। दीवा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन ये जरूर पता चल गया था कि आर्यांश और दीवा को साथ में देखकर रक्षित की हालत खराब हो रही है और ये उसे चिढ़ाने के लिए काफी था। वो जानबूझकर चुप थी। वहीं आर्यांश रक्षित को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। उसने दीवा के बालों पर अपना चेहरा रखा और उसे हल्का सा किस करके कहा, तुम्हें बताया नहीं क्या, हम दोनों ने लगभग 6-7 महीने पहले शादी की थी, ऐसा ही है ना स्वीट हार्ट? आर्यांश ने दीवा की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर पूछा। आर्यांश की जो इमेज थी उसके बाद वो खुलेआम किसी को इस तरह अपनी पत्नी नहीं कह सकता था। ये एक वायरल न्यूज बन सकती थी। दीवा समझ गई थी कि आर्यांश उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा कर रहा है। दीवा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वही तो, जब तुमने बताया कि तुम अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आ रही हो तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं देखना चाहता था कि आखिर कौन है वो इंसान जिसे तुमने डेट किया। ये तो कुछ भी खास नहीं है, देखने में ही बेवकूफ लग रहा है, ऊपर से तुम पर हक जताने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो तुम्हारे आसपास भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आर्यांश हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। दीवा की तरफ देखकर बात करते हुए आर्यांश ने हल्की सी विंक की जिससे दीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो वहीं उसकी बातें सुनकर रक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो आज यहां दीवा को हासिल करने के लिए आया था और उसे उसकी शादी का पता चल रहा था। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, रक्षित ने चिढ़ते हुए कहा। रक्षित गुस्से में पंच करने के लिए आर्यांश की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही आर्यांश ने उसे कसकर जोरदार घूंसा मारा। रक्षित दर्द से कराहता हुआ टेबल पर गिर गया था। उसकी नाक से खून की धार बहने लगी। वहां कोई बड़ी लड़ाई ना हो जाए, ये सोचकर दीवा ने जल्दी से आर्यांश का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से चलते हैं। वो किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। आर्यांश की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि रक्षित ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसने सर्द निगाहों से दीवा की तरफ देखा और नामे सिर हिला दिया था। साफ था कि वो रक्षित को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। आर्यांश ने इशारे से दीवा को दूर हटने को कहा तो वो पीछे चली गई थी। रक्षित इस वक्त इतने नशे में था, वो ये तक नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं आर्यांश कपूर है, जो हर तरीके से उसे बर्बाद करने की औकात रखता है। वहीं दीवा के उसकी बात मानकर दूर जाने की वजह से आर्यांश के चेहरे पर हल्के सुकून के भाव उभर आए थे। अगर वो पहले ही इतने आराम से उसकी बात मान लेती तो अब तक वो उसकी पत्नी बन चुकी होती। रक्षित जल्दी से खड़ा हुआ, उसने अपनी टाई ठीक की और शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ा दिया था। वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। इतने लोगों के बीच उसने न सिर्फ रक्षित को मारा था बल्कि उसकी इंसल्ट भी की थी। तुमने मुझे मारा, आज रात मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, रक्षित ने चिल्लाकर कहा। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा और अपने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए बोला, आज की रात मैंने तुम्हारे किए का तुम्हें सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम बता देना। आर्यांश भी फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने काफी पहले से ही इसमें ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वो श्योर था कि आज से रक्षित की चटनी बनने वाली है। आर्यांश ने उसे फाइट करने के लिए आगे बुलाया। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगे थे। कुछ लोग आर्यांश को जानते थे तो वो समझ गए थे कि आज रक्षित वहां से जिंदा नहीं जाने वाला। रक्षित आर्यांश को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आर्यांश साइड में हट गया था, इस वजह से रक्षित नीचे गिर गया। अब हमला करने की बारी आर्यांश की थी।
आर्यांश ने रक्षित का हाथ पीछे की तरफ मोड़ा और फिर उसके पेट में जोरदार लात मारी। फिर उसने धकेलकर उसे अपने कदमों में गिरा दिया था। इससे पहले कि वो उसे आगे मारता, दीवा जल्दी से उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया था। दीवा की आंखें नम थीं। रक्षित चाहे जैसा भी इंसान हो, लेकिन एक वक्त में वो उसका प्यार था। प्लीज जाने दो, तुम पहले ही इसे बहुत मार चुके हो, दीवा ने धीरे से कहा और फिर रक्षित की तरफ देखा, जिसके होठों के कोनों और सिर से खून बह रहा था। आर्यांश ने सिर हिलाया और फिर रक्षित की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, आज के लिए जाने देता हूँ, लेकिन कल तुम नहीं बचोगे। इतना कहकर उसने दीवा की आंखों में देखा। क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा, दीवा ने हैरानी से पूछा। उसे आर्यांश की आंखों में देखकर डर लग रहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं हवा में बातें करता हूँ दीवा गोयनका, आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा, जिस पर दीवा हड़बड़ा गई। दीवा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्यांश के दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात साफ थी कि अब रक्षित खतरे में था। आसपास लोगों ने उसकी हालत को देखा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सब जानते थे कि आर्यांश कपूर कौन था, और ऐसे में कोई उससे नहीं उलझना चाहता था। दीवा ने रक्षित को उठाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया था कि आर्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और खींचकर उसे वहां से ले जाने लगा। क्या लगता है रक्षित के साथ अब क्या होगा, वही जो मंजूरे आर्यांश होगा। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।